گزشتہ صدیوں میں جہاں تشیعہ کا سب سے اہم علمی مرکز حوزہ علمیہ نجف تھا، جو کہ 700 سال پرانی تاریخ رکھتا ہے، اس حوزہ کے بلند پایا اور بے مثل اساتذہ نیز مرقد حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے جوار نے اس جگہ کو نقلی اور عقلی علوم کی تحصیل کے لیے بے بدیل جگہ میں تبدیل کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے ایرانی طلاب دیگر حوزہ ہائے علمی کے فقر کی بنیاد پر اس دیار کی طرف سے سفر کرنے کے سوائے کوئی چارہ نہیں رکھتے، لہذا محمد حسین طباطبائی اپنی جوانی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنا شہر چھوڑنے پر مجبور ہوئے اور نجف کی طرف چلے گئے۔ علامہ کے قلم سے ان کا اپنا زندگی نامہ۔ سن 1304 کو اپنی تعلیم مکمل کرنے کی غرض سے نجف کا سفر کیا۔ وہاں مرحوم آیت اللہ آقائے شیخ محمد حسین اصفہانی کے درس میں شرکت کی، ان کے پاس اصول کے خارج کا 6 سالہ دورہ مکمل کیا۔ اس طرح معظم لا کے درس فقہ میں 4 سال تک شرکت کرتا رہا۔ مرحوم آیت اللہ آقائے نائنی کے درس فقہ میں بھی 8 سال تک شرکت کی۔ اس طرح معظم لا کے درس اصول کا بھی ایک دورہ مکمل کیا تھا۔ مرحوم آیت اللہ آقائے سید ابو الحسن اصفہانی کے درس فقہ میں بھی کچھ عرصہ شرکت کرتا رہا۔ علم رجال کی کلیات کو مرحوم آیت اللہ آقا حجت کوہ قمری کے پاس پڑھا۔
جیسا کہ میں نے بتایا ہے، مرحوم علامہ کہا کرتے تھے کہ میں جب پہلی مرتبہ نجف اشرف گیا تو اللہ تعالیٰ سے چاہا تھا کہ خود اللہ تعالیٰ میرا ہاتھ پکڑ لے اور مجھے کامیابی تک پہنچا دے، یعنی نجف اشرف سے ضروری استفادہ کر سکوں۔ پھر اسی بات کو جو میرے ذہن میں تھی، میں نے کسی کو دیکھا کہ وہ ایک ایسا عالم دین ہو سکتا ہے جو اسلام کے بڑے اور عظیم علماء میں سے ہو۔
آقا قاضی ہر چیز سے علامہ طباطبائی کے لیے۔
میں اس لائق نہیں ہوں کہ آقا قاضی کے بارے میں بات کر سکوں۔
آقا قاضی ان لوگوں میں سے تھے کہ جن کو افسانوی شخصیت کہا جا سکتا ہے۔
میں نے بار بار دیکھا ہے کہ جب علامہ طباطبائی ان کا اسم مبارک اپنی زبان پر لاتے تھے تو ان کے جسم میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا، جسے ہم مشاہدہ کر سکتے تھے۔
جو احکام وہ دیا کرتے تھے، گویا وہ پہلے خود اس پر عامل تھے۔
جب وہ یہ جملہ کہتے کہ اپنے آپ سے راضی نہ رہا کرو، پھر شاگردوں کی طرف ایک نظر کرتے اور سر کو نیچے جھکا لیتے اور خاموش ہو جاتے۔ علامہ کا یہ جملہ ان کے شاگردوں میں ایک انقلاب بھی پیدا کر دیتا تھا، ان کے اندر ایک مانوی روحانی تبدیلی کا باعث بھی بن جاتا تھا۔ صرف یہی ایک جملہ کہ اپنے آپ سے راضی نہ رہا کرو۔
آقا قاضی کے پاس جو کچھ تھا وہ اہل بیت عصمت و طہارت کے ساتھ توسط کی وجہ سے تھا۔
مرحوم آقا قاضی کا بھی یہی شیوا تھا کہ جو کوئی بھی آتا اور وہ یہ تشخیص دیتے کہ انہی افسانوی کردار میں سے ہے تو پھر اس کے پیچھے چلے جاتے تھے۔
آقا کہتے ہیں کہ جب وہ لفظ استاد کو بطور مطلق کہا کرتے تھے تو اس سے مراد آقائے قاضی ہوا کرتے تھے۔
آقائے طباطبائی اور آقائے قاضی ظاہراً ایک ہی خاندان یعنی قاضی خاندان سے تھے۔
آقائے قاضی بھی انہیں پسند کرتے تھے۔ ان دونوں کے درمیان دو طرفہ صمیمی رابطہ تھا۔
فرماتے ہیں کہ جب بھی وہ استاد کہتے ہیں اس سے مراد آقائے قاضی ہیں۔
به سرچشمه خورشید نخود بردم راه، ذره بودم و چشم ذره بودم و مهر تو مرا بالا برد. من خسی بی سر و پایم که بچه من خسی بی سر و پایم که به سیل افتادم، او که می رفت مرا هم به دل دریا برد.
یہ بات سچ ہے کہ علامہ طباطبائی کی یہ جو مانوی شخصیت ہے، یہ شخصیت مرحوم آیت اللہ قاضی کی بنائی ہوئی شخصیت ہے۔
آقائے قاضی نے مرحوم علامہ کی صلاحیتوں کو ابتدا سے ہی جان لیا تھا کہ آپ فلسفے کے پیچھے جاؤ گے اور ضروری ہے کہ آپ پختہ عقل کے پیچھے جائیں گے، لیکن سوز و گداز والا دل بھی ہمراہ ہونا چاہیے، یعنی پختہ عقل اور سوختہ دل کو اکٹھا لے کر چلو۔
مہمان حبیب خدا ہے، اور ان کے پاس اس دن ایک مہمان تھا جو حبیب خدا تھا۔ جب وہ خود آیا تو وہ جا چکا تھا، لیکن اس کی موجودگی کی حرارت نے محمد حسین طباطبائی کی جان و رواں میں ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا تھا۔ طوفان عشق نے اس کے وجودی سمندر کو معجزن کر دیا تھا۔ اس کی آواز کی گونج ہمیشہ کے لیے محمد حسین طباطبائی کی کانوں میں آسمانی گیت بن کر گونجنے لگی۔ سید محمد حسین، تہذیب نفس کی فکر کرو، اگر دنیا چاہتے ہو تو نماز تہجد پڑھو، اور اگر آخرت چاہتے ہو تو بھی نماز تہجد پڑھو۔
آقائے طباطبائی کا پہلے خاندانی نام قاضی تھا، یعنی قاضی طباطبائی تبریزی۔ اوائل میں جب وہ مقالہ لکھا کرتے تھے تو لکھتے طباطبائی تبریزی۔ دوستوں نے مزاح میں کہا، آقائے محترم، کیا آپ نیشنلسٹ ہو گئے ہیں جو اپنے مقالے کے آخر میں لکھتے ہیں تبریزی؟ تو پھر بعد میں انہوں نے اس لفظ کو ختم کر دیا۔
جہاں تشی میں نجف علمی تحصیلات کا مرکز رہا ہے، ساری دنیا سے ہزاروں طلباء اس شہر کے قدیمی حوضات میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن نجف چھوٹا ہے اور اس شہر میں فلاح و بہبود کے وسائل بڑے شہروں کی طرح نہیں ہیں۔ یہاں کی آب و ہوا خشک اور گرمیوں کا موسم بہت گرم اور جانسوز ہوتا ہے۔ پانی کے لیے شہر میں پائپ نہیں بچھے ہوئے اور عام طور پر لوگ فرات سے مشک بھر کر لاتے ہیں۔ گلیاں تنگ اور گرد آلود ہیں، اور سب سے اہم چیز، یہاں کھانے پینے کی اشیاء میں حفظان صحت کے اصولوں کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ اس صورتحال نے طلبہ کی زندگی کو دشوار بنا دیا ہے۔ ان دنوں نے محمد حسین طباطبائی کی زندگی کو بھی بہت مشکل بنا دیا ہے۔ ان طاقت فرسا حالات کی وجہ سے ان کی اولاد یکے بعد دیگرے مرتے جا رہے ہیں اور ماں باپ کو اپنے ماتم میں بٹھا رہے ہیں۔ علامہ کی بیوی کے پاس صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ محمد حسین طباطبائی آخر عمر تک خود ان کو بزرگواری کا مرہون منت سمجھتے رہے ہیں، اور اکثر یہ جملہ کہا کرتے تھے، اگر میری بیوی کا حیران کن قسم کا صبر و تحمل نہ ہوتا تو نہیں معلوم کہ میں ان حالات میں تعلیمی سلسلے کو جاری رکھ سکتا تھا یا نہیں۔
इनके लिए सबसे अहम जिसका किरदार था वो इनके अयाल थे, यानी हमारी वालदाए मोहतरमा। वो खुद को अपने शौहर में तलाश किया करती थी और आखिर उम्र तक यूं ही था। उन्होंने अपने शौहर को कबूल कर रखा था और इनकी मुश्किलात को सब्र तहम्मुल के साथ सहती थी। इन हालात में चंद एक बच्चे 2 साल से पहले ही फौत हो गए थे। ये बात औरत के लिए बहुत अहम है कि इनका पहला बच्चा मर जाए, ख्वाह वो बच्चा दूसरा, तीसरा या चौथा हो। जो बच्चा कमसिनी में मर जाए माँ के लिए तो ये दुख ही है। वहाँ का मौसम बहुत ही सख्त था, उनके लिए बिल्कुल भी साजगार नहीं था। आका काजी अक्सर इनके घर आया करते थे। मेरी वालदा ने मुझे बताया कि तुम्हारे वालिद ने मुझे इजाज़त दी थी कि जब भी आका काजी हमारे घर आएं तो मैं रास्ते में इन्हें सलाम करूं। इसी तरह एक मर्तबा आका काजी कहने लगे, ऐ मेरी बेटी परेशान ना हो, इस मर्तबा तुम्हारा बच्चा जिंदा रहेगा, उसका नाम अब्दुल बाकी है। वालदा ने बताया कि तुम्हारे वालिद को अभी खबर ना थी कि मैं उम्मीद से हो चुकी हूं। मुझे तुम्हारे बाप से बहुत शर्म महसूस होती थी।
मोहम्मद हुसैन तबातबाई को नजफ आए हुए 8 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। इनकी जिंदगी का गुजर औकात इस कमतरीन रकम के साथ हो रहा है जो तबरेज से शादाबाद की जमीनों से आती है। लेकिन इन्हीं दिनों ईरान में रजा शाह अपनी जाबिराना हुकूमत के सुतून मजबूत करने के लिए अपनी पसंदीदा इस्लाहात को नाफिज करता है। उसने पहले ही मरहले में बैरून मुल्क रकूम भेजने पर पाबंदी आयद कर दी, बिलखसूस अतबात आलिया रकम के इरसाल पर पाबंदी का हुक्म जारी किया। इस बिना पर ईरानी तलबा की जिंदगी शदीद मुश्किलात का शिकार हो गई, सख्त तंग दस्ती होने लगी। इधर जवान अल्लामा अपनी जाती राय की बिना पर सहम इमाम और वजूहात से इस्तेफादा नहीं करते, लिहाजा ज्यादा सख्त हालात से दो चार हो गए। मोहल्ले के दुकानदार और जान पहचान वाले अफराद से लिए जाने वाले कर्जों का सिलसिला बढ़ता ही चला जा रहा है। मजबूर होकर घर के वसाइल फरोख्त करना शुरू कर दिए हैं।
जिस दौर में रजा शाह ईरान में हाकिम था उसने रकूम को बैरून मुल्क भेजने की मुखालफत की। इन्हें रकम भेजने की इजाजत ना थी। कहते हैं कि हमने बहुत खत अरसाल किए लेकिन रकम नहीं आती थी। हमारा बिल आखिर कुछ ना कुछ तो खर्च था। वो खुद थे, घर वाले थे, मैं बच्चा था और उनका भाई भी इन्हीं की जेरे किफालत था। हर रोज का खर्चा था और हम तक पैसे नहीं पहुंच रहे थे। हम मजबूर थे कि दोस्तों, आशना और दूसरों से कर्ज लें या दुकानों से उधार खरीदारी करें। आहिस्ता आहिस्ता इस काम की ज़र्फियत ख़त्म हो गई। अब हम ना किसी से कर्ज ले सकते थे और ना ही किसी दुकानदार से मज़ीद उधार ले सकते थे। सख्त तंग दस्ती का शिकार हो गए। इसके बाद घर के वसाइल फरोख्त करना शुरू कर दिए। आहिस्ता आहिस्ता घर की चीज़ें बेच दी और वसूल शुदा रकम खर्च हो गई। इधर हम बार बार ख़त लिखते लेकिन जवाब ना आता। ये सिलसिला इतना बढ़ा कि घर की हर चीज़ बिक गई, हत्ता के रज़ाई, गद्दे, तकिए, कालीन, बर्तन और किताबें, दरसी गैर दरसी कुतुब भी फरोख्त कर दी। इजाफी लिबास बेचने शुरू कर दिए। हर चीज़ बिक गई। निचले कमरे में एक दरी बच गई। ये वाकया माह असवन सन 1314 का है। कोई नतीजा ना निकला। वाले साहब बताते हैं कि एक दिन मैं इन हालात से बहुत परेशान था, उठा और हरम चला गया। सलाम व ज़ियारत करने के बाद मैंने अर्ज़ की, या खुदा, क्या इस तरह तलबा का ख्याल रखते हैं? मैंने ऐसा कह दिया, लेकिन जो ही मैंने ये जुमला कहा फौरन पशेमान हो गया कि ये बात तवक्कुल के ख़िलाफ़ है। और मैंने क्यों ऐसी बात की? चूँकि बात कह चुका था और मेरा जहन परागंदा हो चुका था। मैं बहुत गु़स्से में परेशान और अस्तग़फ़ार करते हुए घर वापस आ गया। उनका घर हरम से करीब था। कहते हैं कि मैंने देखा कि घर में कोई भी नहीं है। इसी हालत में बग़ैर दरवाज़े पर दस्तक के और इसके बग़ैर कि मैं दरवाज़ा खोलूं, एक पुख्ता उम्र का शख्स घर के अंदर दाखिल हुआ, सलाम किया और बताया कि मैं शाह हुसैन वली हूं। मेरे वालिद ने बताया कि उस ज़माने में शाह हुसैन वली एक दरवेश था जो शिया और आरिफ मसलक का था और तबरेज़ का रहने वाला था। वहाँ वो अपने मिसाली वजूद के साथ जाहिर हुआ और मेरे पास आया। इसने कहा, मैं शाह हुसैन वली हूँ और इमाम अलैहिस्सलाम आपको सलाम कहते हैं और फरमाते हैं कि इन 17 सालों में कब खुदा ने आपको अकेले छोड़ा? फिर वाले साहब बताते हैं कि कुछ रकम वसूल हो गई और हमने सारे कर्ज उतार दिए। मैंने अपनी जौजा से कहा, खानम, अब नजफ़ में हमारा रिस्क ख़त्म हो गया है, तुम तैयार हो जाओ ताकि यहाँ से तबरेज चले। हमारे पास कोई सामान तो था ही नहीं कि जिसकी हम फिक्र करते। दूसरे ही दिन सबसे खुदा हाफिजी की और फिर वहाँ से तबरेज की तरफ सफ़र शुरू किया। तबरेज पहुँचकर एक टांगा किराए पर लिया जिसने हमें हमारे घर तक पहुँचा दिया। इस रकम से बचे हुए आखिरी 2 रियाल इस तांगे वाले को दिए। तबरेज वाले घर में दाखिल हुए और वो सारी रकम ख़त्म हो गई।
सन 1314 को माशी तंग दस्ती की बिना पर मजबूर होकर वापस आ गए और अपनी पैदाइशगाह तबरेज की तरफ लौट गए। तबरेज और अतराफ सन 1314, शादाबाद गांव सन 1385।
तबरेज आकर उन्होंने रिहाइश इख्तियार कर ली, शादाबाद जाकर अपनी ज़मीनों की देखभाल करना शुरू कर दी, क्योंकि जब तक वो नजफ में थे उसकी मुनासिब देखभाल नहीं की गई थी। अक्सर बागात, नदियाँ और खेत वीरान हो रहे थे। उस वक्त वो ऐसे काम को मुदीरियत कर रहे थे जैसे आजकल मॉडर्न दौर में किसी काम को संभाला जाता है, जबकि उस दौर में ऐसे तरीक़े राइज नहीं थे। बागात के लिए उन्होंने सड़क बनवाई, बर्फ़बारी के दौरान गर्म कपड़े पहनकर छतरी पकड़े खेतों में खड़े रहते थे ताकि मुलाज़मीन के साथ मौजूद रहें। पौधों को यूं लगाते थे कि आदमी कहीं भी खड़ा होकर बाग को हर तरफ से देख सकता था, यानी जमा व ज़र्ब के निशान पर बिल्कुल एक जैसे पौधे खड़े होते थे जिससे बाग की निगरानी करने में भी आसानी होती थी।
आज अगरचह इनके बकौल तदरीस और इल्मी तफक्कुर से सिवाय एक मुख्तसर काविश के दूर हो चुके हैं, लेकिन गांव वालों के साथ मिलकर शादाबाद के वीरान बागात को एक छोटी सी जन्नत बनाने में कामयाब हो गए हैं। और कई साल की तंगी और दरबदरी के बाद इनके घर वालों और बच्चों ने आसाइश और सुकून हासिल किया है। लेकिन ये दिन ज्यादा देर ना रह सके। सन 1324 में आजरबाईजान दूसरी आलमी जंग के बाद नए हादसात के लिए आमादा हो रहा है। ये जरखेज खित्ता कई साल की नाअमनी और तसल्लुत के बाद रूसी अफवाज के इखराज को देख रहा था।
सन 1320 तक के जब इत्तेहादी अफवाज ईरान में दाखिल हुई, उस वक्त तबरेज और आजरबाईजान में अमन व अमान की सूरत हाल बहुत कमज़ोर पड़ चुकी थी। वाले साहब ने कमर पर बांधने वाली एक पिस्तौल खरीदी और एक नाली वाली बंदूक खरीदी अपनी हिफाजत और दिफा के लिए। ये असला घर में रख लिया। अलबत्ता ऐसा कोई मौका नहीं आया कि इनसे इस्तेफादा किया जाए। गर्मियों के मौसम में एक दिन जंग से वापस आए हुए रूसी फौज के सिपाही रात की तारीकी में चोरी चकारी की नीयत से शादाबाद आए। जब हम भी गांव गए हुए थे, वहां का मकान दो मंजिला था। वाले साहब ने कहा, आप लोग नीचे चले जाएं, और खुद ऊपर की छत पर चले गए और वहां मोर्चा बनाकर हवाई फायरिंग शुरू कर दी, जिससे डर कर वो फौजी भाग गए।
तहरान में रजा खान अपने कदीमी अरबाब के गजब का शिकार हो गया और मुल्क से चला गया। इस कशमकश और कहत की हालत में जाते हुए अपने बेटे मोहम्मद रजा को तख्त पर बिठा गया। मरकजी हुकूमत बहुत कमजोर पड़ चुकी थी, जिस बिना पर इलाकाई कुवतों को सर उठाने का मौका मिल रहा था। आजरबाईजान में डेमोक्रेट पार्टी अपने लीडर जाफर पेशावरी और रूसी बोरशिकवा इन दोनों की हिमायत से काबिज होने में कामयाब हो गई। जाफर पेशावरी ने इलाके का कंट्रोल संभाल लिया। इश्तराकी नजरियात की तरवीज के जरिए अपने हमसाये के मालो असबाब पर कब्जा करते रहे।
आजर महीने के सन 1324 में आजरबाईजान मरकजी हुकूमत से नाराज था। इन हालात में डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबरा जाफर पेशावरी ने इस खराब सूरत हाल से इस्तेफादा किया और रूस की मदद से आजरबाईजान को तेहरान से अलग कर दिया। बहुत से मालिकीन को कत्ल कर दिया गया और उनके मालो असबाब को लूट लिया। हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए। आवाम से कहा जाता कि जाओ मालिकीन के गोदामों को खाली कर लो। कुछ अरसा यूं गुजरा और फिर आवाम में जो लोग कमजोर रह गए थे, उन्होंने जब कहा हम क्या करें, इन्हें जवाब दिया गया कि जिन लोगों ने गोदाम लूटे हैं आप लोग इनसे कुछ उठा लो। मुझे याद है कि रात के वक्त 2-3 बजे इन डेमोक्रेटिक वालों में से कुछ लोग आते और कहते 2000 या 5000 तो मान दो। फिर माह असफन सन 1324 में जब तबरेज के इलाके में बदअमनी अपने उरूज पर पहुंच गई, तो वाले साहब ने ये फैसला किया कि अब हमें कुम की तरफ हिजरत कर जानी चाहिए।
10 साल से कुछ ज्यादा अरसे तक ऐसे हालात में जिंदगी गुजारी कि हकीकत यह है कि इस दौर को मैं रूहानी तौर पर खसारत का दौर शुमार करता हूँ, इसलिए कि जिंदगी के लिए जरूरी माश को सामान देने और समाजी ताल्लुकात को बाकी रखने की खातिर इल्मी तफक्कुर से सिवाय एक मुख्तसर ताल्लुक के अलावा बिल्कुल दूर हो चुका था। मुसलसल अंदरूनी तौर पर सख्त रंज और तकलीफ में था।
आज तक आजाद फिक्र अल्लामा तबातबाई से ज्यादा मैंने जिंदगी में नहीं देखा।
लोगों के और अपने दरमियान किसी भी किस्म के फर्क के कायल न थे। मुझे आज तक ये बात अच्छी तरह याद है कि मैंने कभी भी उन्हें नया लिबास पहने हुए नहीं देखा।
अगर आप उन्हें कभी नमाज पढ़ते हुए देख लेते तो हकीकतन वो नमाज में महव होते थे।
हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम इन्हें इनके अजदाद व ताहिरीन के साथ महशूर फरमाए और मरहूम को जन्नत में आला तरीन मकाम अता फरमाए।